ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है। वीकली हाइलाइट्स पॉडकास्ट के साथ बेहतर चलानी हाजिर है। आज कुछ दिलचस्प रिपोर्टें आपके लिए पेश करते हैं।
मेरे ख्याल में सप्लाई चेन के मसाइल बड़ी हद तक ज़खीरा किए गए माल की कमी की वजह से पैदा हुए हैं। ये कमी कोविड लॉकडाउन की वजह से बढ़ी। कारखानों ने नया माल बनाने के बजाय मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनी ज़खीरा की हुई अशिया को इस्तेमाल किया।
दुनिया भर में लोग आज महंगाई से परेशान हैं। 2021 का साल तो गुजर गया, अब 2022 हमारे लिए क्या ला रहा है, तफसील पेश करेंगे थोड़ी देर में।
वो मेरे हाथ पे ये चढ़ी है तो इसकी कीमत जो है 55,000 रुपए, 55,000 यानी 20,000 से 15,000 से लेकर के 20,000 यानी 60,000 तक मैं चढ़िया बनाता हूँ।
जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये रिपोर्ट है बलूचिस्तान की एक सकाफती रिवायत के बारे में। तफसील कुछ देर में पेश करेंगे। तो आइए आज की पहली रिपोर्ट पेश करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की सतह एक बार फिर 12.3% तक जा पहुंची। गुज़श्ता कुछ अरसे में दुनिया के बेशतर मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी महंगाई के सैलाब ने लोगों की जेबों पर भारी बोझ डाला। तुर्की में भी पीर के रोज शाया होने वाले सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 2002 के बाद पहली मरतबा 36.1% की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गयी। इसी तरह दुनिया भर में साल 2021 के दौरान माशी सरगर्मियों पर कोरोना वबा का साया छाया रहा। हुकूमतें माशी तरक्की बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती नजर आईं। 2021 में आलम मईशत की सूरत हाल क्या रही और अब नए साल 2022 में दुनिया की मईशत को किन खतरात का सामना हो सकता है, आइए सुनते हैं असदुल्ला खालिद की इस रिपोर्ट में।
2021 के आगाज में आलमी मालियाती इदारों का अंदाजा था इस साल आलमी मईशत में 5-6% के दरमियान इजाफा होगा, जो कि कम व बेश दुरुस्त रहा, लेकिन कोविड की आलमी वबा के आलमी मईशत पर परेशान कुन असरात भी जारी रहे।
खबरें ज्यादा अच्छी नहीं रही हैं। इसकी बड़ी वजह वैक्सीन की वसी पैमाने पर दस्तयाबी और इंतहाई जरूरी अद्वियात से पेटेंट के तहफ्फुज को खत्म करने में हमारी नाकामी है।
लेकिन आलमी मईशत को जुज़वी तौर पर तरक्की पजीर ममालिक और मसनूआत बरामद करने वाली उभरती हुई मईशतों ने संभाला दिया, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक आलमी तरसील के निजाम में खलल से निमटते दिखाई दिए।
मेरे ख्याल में सप्लाई चेन के मसाइल बड़ी हद तक ज़खीरा किए गए माल की कमी की वजह से पैदा हुए हैं। ये कमी कोविड लॉकडाउन की वजह से बढ़ी। कारखानों ने नया माल बनाने के बजाय मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनी ज़खीरा की हुई अशिया को इस्तेमाल किया।
दो हजार बीस के दौरान आलमी वबा के मसाइल के बायस आलमी मईशत में जो मुश्किलात पैदा हुई, साल 2021 में उनमें मजीद इजाफा देखा गया।
कुछ चैलेंजेस थोड़े से मॉडरेट हुए क्योंकि वैक्सीन्स आ गईं और इकोनॉमीज जो बिल्कुल लॉकडाउन हुई हुई थी उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगा, लेकिन उसके साथ ही कुछ चैलेंजेस बढ़ भी गए, जिसमें एक इन्फ्लेशन का था, एक डेट का था। और ये जो चैलेंजेस हैं ये इसीलिए पैदा हुए कि ये कोविड रिलेटेड जो स्लो डाउन था उसको फाइट करने के लिए जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई ये उनके साइड इफेक्ट्स थे।
दुनिया के बहुत से ममालिक के लिए 2021 में महंगाई एक बड़ा मसला रहा। हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज भी हुए। अमेरिका में इस साल महंगाई की शरह तकरीबन 40 सालों की बुलंद तरीन सतह पर रही।
I think inflation has followed a similar pattern.
जब भी हम कसाद बाजारी से बाहर निकलते हैं महंगाई में इजाफा देखा जाता है। मेरे ख्याल से अब भी महंगाई इसी तरज पर रही है।
2021 के साल में दुनिया की मईशतों के लिए एक और बड़ा मसला सरकारी कर्जों में इजाफा था। IMF के मुताबिक हुकूमतों ने आलमी वबा के चैलेंज से निमटने में मदद देने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से अपने आवाम को माली रिलीफ दिए, जो कि आलमी कर्जों में 28% इजाफे का बायस बना।
I think debt is certainly growing, but what we have learned during the
मेरे ख्याल में कर्जा यकीनी तौर पर बढ़ रहा है। अमेरिका खुशकिस्मत है कि हम अपनी करेंसी में कर्ज लेने के अहल हैं, लेकिन ज्यादातर मुल्कों के लिए ऐसा नहीं है।
माहिरीन मईशत समझते हैं कि आइंदा साल भी हुकूमतों को मुआशी तरक्की और महंगाई पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना होगा।
ये जो इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया है उसके जो तदारुक है उससे बाज़ दफ़ा मुआशी तरक्की को कम करना पड़ता है। ये एक डिलेमा है या बैलेंसिंग एक्ट है जो सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स को फेस करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन को मॉडरेट करें जबकि विदाउट हर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक चैलेंज 2022 में होगा।
मालियाती खिदमात फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी मॉर्गन स्टैनले के अंदाजे के मुताबिक 2022 में बड़ी आलमी मंडियों में महंगाई में 2% से ज़ायद कमी होगी। ताहम इससे पहले अफरात-ए-ज़र अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँचेगी। जबकि एक और अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक महंगाई आइंदा साल दुनिया की मईशत के लिए सबसे बड़े खतरात में नुमाया रहेगी। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से बहजे जलानी आपके साथ है और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट। आप वीओए उर्दू के पॉडकास्ट की ताजा किस्तें सुनने के लिए इसे आईट्यून्स, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई ऐप पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जिंदगी तेजी से बदल रही है, इसके तकाजे और इसकी जरूरियात आज के दौर में वो नहीं जो आज से कुछ अरसा कब थी। आज की जिंदगी तो फास्ट लेन में है जहाँ एक ही वक्त में आपको मुख्तलिफ समतों में सफर करना होता है। ये डिजिटल दौर है और तकाबली दौर है। मामूलात जिंदगी बदल रहे हैं। अब 9 से 5 तक दफ्तरी नौकरी तो पुरानी बात हो गई क्योंकि कई नए तरीके आपकी महारत आजमाने के लिए सामने हैं। और ऐसा ही एक तरीका है फ्रीलांसिंग का। आजकल फ्रीलांसिंग का लफ्ज आम सुनने को मिलता है और अक्सर नौजवान कोई मुस्तकिल नौकरी करने के बजाय इस मैदान में अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग है क्या? क्या कोई भी शख्स फ्रीलांसिंग कर सकता है? और पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को किन मुश्किलात का सामना है? आइए आपको सुनवाते हैं अदील अहमद और सुंबल कामरान की इस रिपोर्ट में।
फ्रीलांसिंग मेरी नजर में इज द आइडियल वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे आप होते हो और आपके पास कंप्यूटर होता है और पूरे दिन बस आप इसी के सामने काम कर रहे होते हैं। तो मेरा नाम हसन है और फ्रीलांसिंग बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी जब मैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मैंने स्टार्ट कर दी थी और इस बात को तकरीबन 10 साल से ज्यादा का अर्सा हो चुका है। फिर टाइम जब उसके पोटेंशियल का अंदाजा हुआ तो फिर मैंने उसको एज अ करियर चॉइस ही प्रेफर किया कि आई वुड रेदर डू दिस इंस्टेड ऑफ दैट 9 to 5 जॉब्स सिनेरियोस। इसमें भी जो है ना बहुत सारे फील्ड्स हैं और फ्रीलांसिंग अब तो क्योंकि पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट हर तरह के काम की होती है। इट्स अप टू यू कि आप उनको क्या ऑफर कर रहे हैं। मेजरली जो क्लाइंट काम आपको आउटसोर्स करता है वो सबसे पहले स्टार्ट करता है छोटे कामों से। वो आपको कॉन्टेंट का काम दे देगा कि मेरे लिए कुछ आर्टिकल्स लिख दें, वो आपके लिए कुछ लोगो बनवा देगा, फिर उसके बाद उसको एडवांसमेंट की तरफ लेके जाएगा या वो आपको अपना एक असिस्टेंट रख लेगा, वर्चुअल असिस्टेंट जिसको कहते हैं, कि वो अपने जितने भी नॉन प्रोडक्टिव काम है या आप उसको कह सकते हैं कि जितने भी वो काम है जिसके लिए उसके आवर्स वो बचाना चाह रहे वो आपको हैंड ओवर करते हैं। आप उसके लिए मीटिंग शेड्यूल करें, आप उसके लिए सोशल मीडिया की पोस्टिंग्स करें एंड ऑल दोस थिंग्स, और वो इस टाइम को यूटिलाइज करता है फॉर डिफरेंट क्लाइंट मीटिंग्स या अपने बिजनेस को ग्रो करने के उसमें। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो US सबसे बड़ी मार्केट है फ्रीलांसिंग आउटसोर्स करने के मामले में भी और फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में भी। तो हमारा भी एम यही होता है कि US क्लाइंट अगर आपको मिल जाता है, एक तो फर्स्टली जो करेंसी का डिफरेंस है वो बड़ा अच्छा मिलता है, दूसरा दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द फ्रीलांसिंग टेक्निकलिटीज एंड मैकेनिज्म, तो उनको ज्यादा जो है ना आपको गाइड नहीं करना पड़ता, इनफैक्ट बहुत सी चीजें वो आपको सिखा देते हैं। तो US इज द मेजर मोस्ट बिग आई वुड रादर से कि बिगेस्ट मार्केट। उसके बाद फिर UK की मार्केट भी है जो कि बहुत जो है ना स्पीड से ग्रेजुअली ग्रो कर रही है। ऑस्ट्रेलिया मार्केट से भी काम आता है, देन उसके बाद आपको आपकी एशियन कंट्रीज से भी काम आता रहता है डिपेंडिंग आप किन स्किल्स पे काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जिस फील्ड में भी पैशन है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड की सर्विसेज आउटसोर्स कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए उस پرٹیکولر سبجیکٹ میں جو آپ آفر کر رہے ہیں. فری لانسر کو جو ڈیفیکلٹی پاکستان کے حوالے سے فیس کرنی پڑتی ہے نا, اس میں سب سے میجر جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے ایک اسٹیبل اچھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی فرسٹ آف آل. دوسرا ان کو ایک ایشو فیس ہوتا ہے کہ ان کی جو منی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ اسموتھ نہیں ہو پا رہی ہیں ابھی تک. جیسے آپ باہر پوری دنیا میں دیکھتے ہیں جی پے پال کے تھرو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں یا ایون کرپٹو کے تھرو آج کل وہ لوگ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں, ہم ابھی تک بیسک ٹرانسفر کے بھی اس لوپ سے باہر نہیں آ پا رہے کہ کس طرح ہم اپنی ایز آف منی ٹرانسفر کو جو ہے نا اس کو ایزی بنائیں. بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ ہاں اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں جاب کی طرح, اس میں جو ہے نا مزے نہیں ہے کہ ہر منتھ کے اینڈ پہ آپ کو ایک سیلری مل جائے گی اینڈ یو ول بی ہیپی, آپ کے سارے بل سارٹیڈ ہوں گے. بہت اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں. دوسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ ہاں آپ جب ہیلتھ اپنی ورک اور پرسنل لائف کو بیلنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتی ہے, کیونکہ میں اکثر راتوں کو بیٹھ کے کام بھی کر رہا ہوتا ہوں تو فیملی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد گھر پہ رہنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے آپ کو کہ تھوڑے بہت یہ کلوز آپ کے ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں. فائنینشلس کی اگر میں بات کروں تو ہاں ان دا لانگر رن جتنی جلدی آپ کی سیلری انکریز ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آپ گرو کر سکتے ہیں فری لانس مارکیٹ پلیس میں, اف یو آر فرسٹلی آنےسٹ ود یور سیلف اینڈ آنےسٹ ود یور ورک. آپ اپنے آپ کو پراپر ٹائم دیں اس کام کو لے کے. اگر آپ جاب پہ 8 گھنٹے دے رہے ہیں تو آپ 10 گھنٹے دے دیں. اب وہ جو 2 آورز آپ کے پہلے واش روم میں تیار ہونے میں اور ٹریول میں ضائع ہو رہے تھے وہ بھی آپ یہاں پر دیں, کیونکہ ناؤ اٹس یور اون بزنس. تو اپنے بزنس میں تو انسان جان لگاتا ہی ہے نا, سو یو نیڈ ٹو بی ویری, اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ میرا پارٹ ٹائم کام ہے. آپ اس سے ڈبل محنت کریں تو ریوارڈس بھی آپ کو انشاءاللہ اس سے ڈبل بھی نہیں ملٹیپلائز میں ملیں گے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کا پوڈ کاسٹ. انسانی حقوق کے علم بردار کہتے ہیں کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ امریکہ کشیدگی کے شکار تبتی افراد اور سنگکیانگ کے خطوں میں بسنے والی اقلیتوں کے بارے میں چین کے رویے پر دباؤ میں اضافہ کرا ہے. متعدد غیر ملکی حکومتیں اور انسانی حقوق کے دائی یہی موقف رکھتے ہیں کہ چین نے 10 لاکھ سے زائد ایغور افراد کو حراستی مراکز میں قید رکھا ہے. ان حراستی مراکز کے لیے چین دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پیشہ وارانہ تعلیمی مراکز ہیں جن کا مقصد مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گرد حملوں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. لیکن چین میں بڑھتے ہوئے جبر کے سبب ہر سال ہزاروں شہری پناہ کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں. چین اور ہانگ کانگ کے شہریوں کے لیے کینیڈا ایک پرکشش منزل رہا ہے. وجہ کیا ہے جانتے ہیں سادیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں.
خوان لونگ کے پاس چین سے نکل جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا.
میرے آرٹ کی وجہ سے مجھے ان تمام برسوں جیل میں رکھا گیا اور حکومت کی طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, اس لیے میرے پاس اپنا ملک چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا.
بیجنگ کا یہ فنکار چینی شہریوں کے مصائب کو دستاویزی شکل میں اجاگر کرنے کے لیے اپنے آرٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ چینی حکام نے انہیں متعدد بار دھمکیاں دی اور گرفتار کیا اور انہیں 15 ماہ کے لیے ری ایجوکیشن تھرو لیبر پروگرام میں داخلے پر مجبور کیا. اب وہ کینیڈا میں سیاسی پناہ کی تلاش میں ہیں. کینیڈا میں تارکین وطن کی بہت سی کمیونٹیز ہیں. کینیڈا کے شہر وینکوور میں تقریباً 20% آبادی چینی نسل سے تعلق رکھتی ہے. بہت سے لوگ تعلیم کے حصول اور معاشی مواقع کی تلاش میں یہاں آئے تھے, لیکن ہوا کی طرح بہت سے دوسرے سیاسی پناہ کی تلاش میں کینیڈا پہنچے.
حقیقت میں اگرچہ لوگ چین سے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ چین میں ہمارے پاس انسانی حقوق نہیں ہیں.
ناقدین کا کہنا ہے کہ چین نے حالیہ برسوں میں ملک کے اندر اور ہانگ کانگ میں بہت زیادہ سختی شروع کر دی ہے. 2020 میں چین نے قومی سلامتی کا ایک نیا قانون نافذ کیا جس میں اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی کو محدود کر دیا گیا. اس کا ہدف ایسے لوگ ہیں جو بیجنگ کے مطابق تخریب کاری یا دہشت گرد کاروائیوں کے ذمہ دار ہیں. بیجنگ کے سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہانگ کانگ میں کئی مہینوں کے پرتشدد جمہوریت نواز مظاہروں کے بعد لوگوں کے تحفظ کے لیے نئے سیکیورٹی قانون کی ضرورت ہے. نئے سیکیورٹی قانون کے جواب میں کینیڈا نے ہانگ کانگ کے رہائشیوں کے لیے ورک پرمٹ اور مستقل سکونت کے لیے 2 نئے طریقہ کار کا آغاز کیا ہے. امیگریشن کنسلٹنٹس کے مطابق ہانگ کانگ کے ایسے رہائشیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو کینیڈا آنے کے لیے ہانگ کانگ چھوڑنا چاہتے ہیں. جب سے کینیڈا کی حکومت نے ہانگ کانگ کے رہائشیوں کے لیے وہاں منتقل ہونے میں آسانی پیدا کی ہے, کینیڈا میں ہانگ کانگ سے نئے تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے. کینیڈا کو پروگرام کی پہلی سہ ماہی میں ہانگ کانگ کے رہائشیوں کی جانب سے مختلف ویزوں کے لیے 3000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں. اس سے پہلے 1997 میں جب برطانوی حکومت کی جانب سے تقریباً 150 سال کے بعد ہانگ کانگ کو چین کے حوالے کیا گیا تو ایک اندازے کے مطابق 3,35,000 ہانگ کانگ کے رہائشی کینیڈا منتقل ہوئے تھے.
توقع کی جا رہی تھی کہ شہریت سمیت مختلف کیٹیگریز میں ہانگ کانگ سے کینیڈا آنے والوں کی درخواستوں کا ایک سیلاب امڈ آئے گا, لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں. और इसका मतलब है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है।
एक वजह यह है कि हांगकांग के बहुत से रिहायशियों के पास पहले से कनाडा के पासपोर्ट मौजूद हैं और वो किसी भी वक्त कनाडा वापस आ सकते हैं। अगरचे अभी तक बड़ी तादाद में लोग तरके वतन करके कनाडा आना शुरू नहीं हुए, लेकिन खबर साइदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग के रिहायशियों ने गुज़श्ता साल रिकॉर्ड तादाद में सरमाया कनाडा मुंतकिल किया था, जो 40 अरब डॉलर से ज्यादा था।
मैं यहाँ बहुत महफूज महसूस करता हूँ, ये आज़ादी की एक जन्नत है, आपको बात करने की मुकम्मल आज़ादी है।
और यही वजह है कि हांगकांग के लोग कनाडा में रहने और वहां की शरीयत के हुसूल का इंतखाब कर रहे हैं। जैसे से मैन आनी के साथ सादिया ज़ेब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से बहजत जलानी आपके साथ है और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट। आप VOA उर्दू के पॉडकास्ट की ताज़ा किस्तें सुनने के लिए इसे iTunes, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई ऐप पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में रिहायश पजीर गैर मुस्लिम अकलियतों की इबादत गाहों की तामीर व मुरम्मत, बहाली, रिहायशी कॉलोनियों और दीगर फलाह व बहबूद के 109 मनसूबों के लिए 513 मिलियन रुपए मंजूर किए। इन मनसूबों में सबसे ज्यादा 19 मनसूबे पेशावर में हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 17 मनसूबों की तामीर दूर उफ्तादा पहाड़ी जिला चतराल में होगी, जिसमें सबसे ज्यादा तवज्जो दुनिया की वाहिद कदीम मजहबी अकलियतों कैलाश बरादरी की फलाह बहबूद पर दी जाएगी। चतराल की वादी कैलाश के इलाके रेमपुर के गांव बटाट में कैलाश गैर मुस्लिम बरादरी के रिवायती रक्स और दीगर मजहबी और रिवायती तकरीबात के लिए भी तामीर इस मनसूबे में शामिल है। किसी भी इलाके की रिवायत और सकाफत दरअसल इसकी पहचान होती है। तो आइए अब आपको बलूचिस्तान लिए चलते हैं, जहां कल्लात के 70 साल मोहम्मद बख्शमरी बलोच सकाफत को जिंदा रखने के लिए ऐसी बेशकीमत और दीदा जेब छड़ियां बनाने का फन जारी रखे हुए हैं, जो माजी में कबाइल के सरदार इस्तेमाल करते थे। मार्केट में इन छड़ियों की कीमत 60,000 रुपए तक है। मजीद आपको बताते हैं क्वेटा से मुर्तजा जहरी की इस रिपोर्ट में।
वो मेरे हाथ पे ये चढ़ी है तो इसकी कीमत जो है 55,000 रुपए, 55,000 यानी 20,000 से 15,000 से लेकर के 20,000 यानी 60,000 तक मैं चढ़ियां बनाता हूँ। चड़ी जो है ये पहाड़ों में कौ होता है, एक दरख्त होता है और बलूची में उसको खत बोलते हैं, और ये खत का लकड़ी जो है मैं पहाड़ों से मंगवाता हूँ। ये डिजाइनिंग जो मैंने बनाए इस पे जो है, एक तो ये पित्तल लगता है इस पे, दूसरा जो है इस पे तांबा लगता है और गिलेट भी लगता है, और किसी बंदे को अगर शौक हो कि भाई मेरे लिए मोती भी लगा दे तो मोती भी लगाते हैं, किसी को अगर शौक हो तो रंगीन जो रंग से बनाते हैं वो रंग वाले भी मैं बनाता हूँ, और वो शौक के मुताबिक पे जो भी कोई चीज मुझे आर्डर देता है उसी आर्डर पर मुताबिक मैं उसे बनाकर देता हूँ। वो कहते हैं कि भाई मेरे लिए अच्छा सा चढ़ी, तो एक महीने के अंदर अंदर वो बन जाता है। टीचर था वो मेरे पास आया मोटरसाइकिल पे मेरे घर के सामने, उसने हॉर्न दिया, मैं निकला बाहर तो उसने कहा कि भाई हम भी तो इसी चिड़ी के पीछे आए हैं, पहले मेरे भाई आपसे मिला था, अभी मैं आपके पास आया हूँ, बड़ी मेहरबानी सेनेट साहब ने, हम लोग को काफी तंग कर रहे तो ये चिड़ी आप हमें दे देना, ये हाथ वाले दे देना। मैंने उस बंदे को चिड़ी पेश कर दिया। कोर कमांडर साहब थे वो, उनकी तो स्टिक होते हैं वो छोटे वाले जो बगल में लगाते हैं, तो वो भी मैंने कोर कमांडर साहब को मैंने बना करके दिए थे। यानी ईरान तक और सऊदी तक हमारे चढ़ी भी चले गए, वहाँ यहाँ से लोगों ने लेकर के उधर दुबई भेज दिए, सऊदी भेज दिए, ईरान भेज दिए। तो ये हमारा छोटा सा हुनर है, और हमारे बलोच कौम जो है वो कल्चर भी रखते हैं और बलोच का एक तारीख भी होता है। मैं कहता हूँ कि तारीख हमारा गुम ना हो और बलोच कल्चर जो है वो जिंदा रहे।
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکا کا ویکلی راؤنڈ اپ پوڈکاسٹ اب ختم ہوتا ہے. بحث چلانے کو بھی اجازت دیجیے.